जनाब तकी रज़ा साहब, मेरे भाइयों और बहुत सारी बहनों, आज मुताले के दौरान मैंने सीरत का एक वाक़या पढ़ा। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया और कहने लगा कि मुझे कोई एक अमल बताइए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक अमल बताइए। आपने कहा सच बोलो, और इसके साथ ये भी कहा कि मेरे बाद अगर किसी का मकाम है तो सादिकीन यानी सच्चों का है, और उनका मकाम यानी शोहदा से भी आगे है। तो कहने का मतलब है कि सच इतना ज़्यादा अहम है, और हमारे पास सब कुछ है, हर तरह का आमाल है, लेकिन सच नहीं है। और शायद इसी की वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, जैसे कि अभी मेरे पेशवा मुकर्रर कह रहे थे कि यानी कबूल नहीं कर रहे हैं सच को, और सच की पर्दापोशी कर रहे हैं, या सच को समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन सच आप तक, हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल सच की इतनी ज़्यादा अहमियत है, लेकिन मेरे ख्याल में आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर, उसमें आंखें रखने वालों के लिए सच आज जितना वाज़े है पहले कभी नहीं था। मैं देखता हूँ शुरू से मेरी सच की जस्तजू रहती थी ख़बरों के हवाले से भी और दूसरे मामलों में, तो मुझे ये महसूस होता है कि आज सच बहुत ज़्यादा वाज़े है, और आज मुझे लोगों को कन्विंस करने के लिए अपने नुक्ते नज़र के बारे में, आज मुझे जितनी आसानी होती है सच समझाने के लिए पहले नहीं होती थी। बहरहाल इस मौजू यानी ये खुलासा कलाम यह है कि सच से गुरेज करना और सच कहने की जुर्रत ना रखना वो सबब है जिसकी वजह से हमें आलम इस्लाम के कई मसाइल का सामना है। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ, जो हमारा बैतुल मुक़द्दस के तहफ़ के ज़िमन में है। देखिए, मेरे हिसाब से यानी दुनिया में 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इन 150 करोड़ मुसलमानों में से बेशतर ख़्वाब गफलत में हैं, सो रहे हैं। और शायद हम सो रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शबखून मारा है। उर्दू ज़बान मुझे बहुत अजीज़ है, और शबखून का जो लफ्ज़ है मुझे यानी इसका इक्विवेलेंट अंग्रेज़ी में नज़र नहीं आता। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन शबखून मारा गया और ऐलान किया गया कि यानी यरूशलम इसराइल में अमेरिका का जो यानी सफारत खाना है वो वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। इसका मतलब यह है कि दुनिया जिसे तस्लीम नहीं करती, एक नाजायज़ रियासत के नाजायज़ दारुल हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो यानी तस्लीम करने पर तुला हुआ है और ये चाहता है कि दूसरे ममालिक भी उसके नक्श कदम पर चलें। लेकिन ये एक ऐसा यानी ज़ख्म है मुसलमानों का, पहले से ही इसराइल जो है मुस्लिम सरजमीन और आलम अरब के सीने पर दागा गया एक खंजर है, जिसके ज़ख्म से तकरीबन यानी 70-80 साल से खून रिस रहा है, और ये फ़ैसला भी उतनी ही दूरस असरात का हामिल होगा और इससे भी काफ़ी अरसे तक यानी खून रिसता रहेगा। लेकिन इसके रद्द अमल में हमने क्या देखा? वक्ती बयानबाजियाँ हुई, अरब लीग का इजलास हुआ, OIC का इजलास हुआ, और जलसे जुलूस हो रहे हैं, और बहुत सारे हमदर्द ज़बानी यानी जमा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं हो रहा मैं समझता हूँ। देखिए, आप कितनी ही करारदादें मंजूर कर लें अरब लीग में, OIC में या कुछ, जब तक आप अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, अरब लीग के बाद OIC का इजलास हुआ, तैयब एर्दोगान साहब बड़े हमदर्द बने फिरते हैं, लेकिन देखिए, उन्होंने कहा था कि अल-क़ुद्स या यरूशलम एक रेड लाइन है, सुर्ख लकीर, इस खबरदार इसके आगे ना जाएं, वरना हम आपसे ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे। आज भी तुर्की के इसराइल से ताल्लुकात हैं। अगर वो चाहते, वाकई अगर कुछ हमदर्दी होती उन्हें, तो उन्हें चाहिए था कि वो ताल्लुकात यानी मुनक़ता करने का ऐलान करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी फिर देखिए कि अरब लीग के इजलास में यानी नाम में हाथ 50 से ज़्यादा मुल्कों की मीटिंग हुई, अगरचे कुछ लोगों ने नई दिल्ली से शिरकत की, अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो, सऊदी अरब के हुक्मरानों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वज़ारत खारजा के एक अहदेदार को तलब कर दिया। यानी आपकी ऐसी छोटी छोटी हरकत और सकनात बताती हैं कि आप अपने कॉज के तहत कितने मुखलिस हैं। ये सरबरा इजलास था, हुक्मरानों को शिरकत करना चाहिए था, लेकिन शाह सलमान ने शिरकत नहीं की, आदिल अल जुबैर वजीर खारजा ने शिरकत नहीं की, किसी और वजीर ने शिरकत नहीं की, किसी शहजादे ने शिरकत नहीं की, बल्कि वजारत खारजा के एक अहदेदार को भेज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इनके इखलास का तो ये आलम है, और जिन मुंतजमीन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने भी कोई ठोस काम नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जिन ममालिक के इसराइल के साथ खुफिया या खुले ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता किए जाते, उन ताल्लुकात की सतह घटाई जाती, उनके साथ मौशी ताल्लुकात यानी उनका मौशी बॉयकॉट किया जाता, उनकी अशिया से यानी उनसे ख़रीदो फरोख्त ना की जाती, ऐसा कुछ अगर होता तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ सकता था कि वो इस इकदाम को वापस लें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी आप चाहे कितने अल्फाज अदा कर लें, जब तक आप अमली कदम नहीं उठाएंगे आपका इखलास जाहिर नहीं होगा और आपकी कलाई खुल जाएगी कि आप अपने कॉज के तई मुखलिस नहीं हैं, जैसा कि आप जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अरब लीग और ओआईसी की जो मीटिंग्स हाल ही अर्से में हुई हैं उसमें यही कुछ हुआ है। सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि यानी वक्ती बयानबाजियों के अलावा कहीं कहीं हम जैसे दीवाने भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरह के आज की महफिल है और इस महफिल के मुंतजमीन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हम इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी नौजवान स्ट्रीट फाइट्स लड़ रहे हैं, तीसरे इंतफादे का ऐलान किया गया है, अल्लाह करे कि ये इंतफादा तादेर कायम रहे। लेकिन शायद ऐसा होता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये इंतफादा सब्सिडाइज हो जाए, लेकिन ये जो फैसला है काफ़ी दूरस असरात का हामिल है और मैं पूरी तरह से मायूस नहीं हूँ, और ये फैसला आने वाले दिनों में बहुत इनकलाब ला सकता है, और ये एक उनकी एक बड़ी गलती हो सकती है जो उन्होंने की है। इसकी वजाहत मैं करने की कोशिश करूँगा। देखिए कि यानी इस फैसले से मशरक़ वस्ता या मिडल ईस्ट की नई सूरतगरी हो सकती है, ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, और ये इसके असरात ऐसे भी निकल सकते हैं कि कुछ फ़ैसला करने वाले हैरान रह जाएंगे, जैसा कि माजी में हुआ था इराक़ पर हमले की सूरत में, और दूसरे कई मिसालें दी जा सकती हैं। शायद इसके लिए इन तफसील के लिए यानी ये मौका मौजू नहीं है। बहरहाल वक्ती तौर पर तो ये एक हौसला शिकन फैसला है हमारे लिए, लेकिन ये हम सबको अमल की दावत भी देता है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि यानी अब हमें मुत्तहिद होकर इस फैसले को उलटने के लिए अपने तौर पर जो कोशिशें हो सके वो करनी चाहिए। यानी इसके अलावा जहाँ तक ये जो ट्रंप का फ़ैसला आया है कि वो इसराइल के दारुल हुकूमत की तरफ से बैतुल मुक़द्दस या अल-क़ुद्स को तस्लीम करें, इसके बारे में कई उलझन भी पाई जाती है। और मैं आप तमाम को ये बताना चाहूँ कि जेरूशलम या यरूशलम कहा जाता है, ये हमारा नाम नहीं है, हमें चाहिए कि इसके लिए अल-क़ुद्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अल-क़ुद्स या बैतुल मुक़द्दस का इस्तेमाल करें। मैं अर्ज कर रहा था कि ट्रंप के ऐलान पर अभी काफ़ी कंफ्यूजन पाया जाता है, बहुत सारे इबहाम पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया कि वो अल-क़ुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करेंगे, लेकिन मैं आप तमाम की मालूमात के लिए बता दूं कि अल-क़ुद्स दो फ़िलहाल जो ज़मीनी हकीकत है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मगरबी अल-क़ुद्स है यानी वेस्ट अल-क़ुद्स या वेस्ट यरूशलम है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है, वहाँ बहुत बड़ी इमारतें हैं, बहुत बागोश बहार हैं, सरसब्जी और शादाबी है, और यानी जदीद सहूलियात हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पहले से इसराइल की पार्लियामेंट है, इसराइली वजारतें हैं, और यानी हर वो चीज़ है जो एक दारुल हुकूमत में होनी चाहिए, सिवाय बैरूनी ममालिक के सफारतखाने नहीं हैं, क्योंकि दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है कि अल-क़ुद्स पर इसराइल का कब्ज़ा जायज़ है, जिस पर उसने 1967 की जंग में कब्ज़ा किया था। लेकिन ये रुझान उलटने वाला फैसला, ये ट्रंप जो सिहियोनी लॉबी का शिकार है, उसका दामाद एक सिहियोनी है, सिहियोनी यानी यहूदियों में भी एक ऐसी कस्म जिस तरह एक आम हिंदू होता है और आरएसएस का हिंदू होता है, आम फहम अंदाज में मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि ये उस तरह के होते हैं। तो ये सिहियोनी नज़रियात रखने वाला ट्रंप और उसका दामाद के जो फैसले हैं, इसकी ये कोशिश है कि इसराइल का जो अल-क़ुद्स पर कब्ज़ा है उसे जायज़ हैसियत दी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी ये जो फैसला आया है इसके बारे में उलझन काफ़ी पाई जाती है कि वो उस इलाके की बात कर रहा है, वेस्ट القدس یا ویسٹ یروشلم کی بات کر رہا ہے جہاں پر اسرائیل کا آلریڈی قبضہ ہے، یا ایک اور جو اسے لگا ہوا علاقہ ہے جو بالکل اسے الٹ ہے، یعنی جسے مشرقی القدس کہا جاتا ہے یا یعنی ایسٹ یروشلم کہا جاتا ہے، وہاں بالکل یعنی تنگ و تاریک گلیاں ہیں اور یعنی بہت زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے اور غربت ہے، پسماندگی ہے. بہرحال وہ جیسا بھی ہمارا ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس یعنی حصے کی، شہر کے کس حصے کی بات کر رہا ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ جو یعنی مشرقی القدس ہے وہ پرانا شہر ہے، اور جو مغربی القدس ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہائی ٹیک سٹی وغیرہ کا اس طرح کا معاملہ ہے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واضح نہیں ہے، انہوں نے اپنے یعنی تیر چھپائے ہوئے ہیں، اپنے دام یعنی واضح نہیں کیے ہیں اپنی چالیں کہ وہ کس حصے کی طرف بات کر رہے ہیں. اور یعنی دیکھیے القدس کیا ہے، یہ جو شہر بیت المقدس کیا ہے، دنیا میں جن شہروں کے سمندر ہوتے ہیں تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ان کی کافی اہمیت ہوتی ہے، لیکن القدس یعنی معاشی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ پہلے رکھتا تھا نہ اب رکھتا ہے. اس کی معاشی اعتبار سے کوڑیوں کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا سمندر نہیں ہے اور اس کی تاریخ یعنی کوئی ایسی معدنی ذخائر وسائل ویسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ وہ شہر ہے جس کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، جس کے لیے یعنی لوگوں نے یعنی سب کچھ اپنا قربان کر کے جنگیں لڑی ہیں، اسے حاصل کیا ہے، اسے اپنے سینے پر تمغوں کی طرح سجایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ابراہیمی مذاہب ہیں، یہودیت ہے یا عیسائیت ہے یا اسلام ہے، ان تمام جو یعنی ابراہیمی ادیان یا مذاہب ہیں ان کے لیے کافی اہمیت کا حامل یہ مقام ہے. اور یعنی اس کے لیے صلیبی جنگیں بھی ہوئی تھیں، یعنی ایک بہرحال 1400 سال جو اسلامی تاریخ رہی ہے ان میں بیشتر وقت مسلمانوں کا یہاں پر قبضہ رہا ہے. اور یعنی آخری مرتبہ یعنی دیکھیے کہ یعنی ابتدائی اسلام کی دور میں اس پر جو ہے رومیو وغیرہ سے اسلام کے جو ابتدائی حکمرانوں نے اسے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے اسے حاصل کیا تھا دوبارہ، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسے حاصل کیا گیا، اور پھر جب پہلی عالمی جنگ ہوئی اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے جس میں کئی یعنی صہیونیوں کی سازش تھی کہ یہ جنگیں کرائی جائیں، اور انہوں نے اس میں انویسٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل بنوانے لگایا تھا. بہرحال اس کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن جو پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد سے وہاں پر فلسطینیوں کا یا مسلمانوں کا یا عربوں کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور ایک ناجائز طریقے سے وجود میں آئی ایک ناجائز ریاست اسرائیل، اور تب سے مسلسل ظلم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ابتدا میں بہت چھوٹی سی تھی، لیکن ایک ایک جیسے جیسے ایسے اقدامات کیے جاتے رہے، جس طرح کہ یہ ٹرمپ کا اقدام ہے، اس طرح پہلے بھی ایک ایک اقدام، ایک ایک واقعے کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا. تو بہرحال یعنی یہ ہم سب کے لیے یعنی ایک تشویش کی بات ہے، چاہے ٹرمپ کا جو اشارہ ہے وہ مشرقی یروشلم یا مشرقی القدس کی طرف ہو یا مغربی القدس کی طرف ہو. بہرحال یہ وہ جگہ ہے، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمارے نقطۂ نظر سے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے پیغمبروں نے تعمیر کی تھی، اس کا تعلق داؤد علیہ السلام سے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ ہے، یہیں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی. یہ ہمارے لیے یعنی جیسا کہ میں ایک اخبار میں سرخی دیکھ رہا تھا، یہ کفر و ایمان کا معاملہ ہے ہمارے لیے. تو ہمیں یعنی ہم سے جو کچھ ہو سکا مسجد اقصیٰ کی یعنی مسجد اقصیٰ کے حصول کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا اسے کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے اس محفل کے تمام شرکا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کاز کو اپنا جانا اور یہاں آنے کی زحمت کی، اور یعنی اس مہم کا حصہ بنے کہ بیت المقدس کا تحفظ کیا جائے. अब जहाँ तक थोड़ी सी काफ़ी शायद मौलाना भी तकरीर करने वाले हैं, कुछ और बातों को मुख्तसर अंदाज में करते हुए मसला समझाने की कोशिश करते हुए मैं रुख्सत होने की कोशिश करूँगा कि यानी फ़लस्तीन इसराइल मसले के ताल्लुक से जो इब्तदाई हुक्मरान रहे हैं, साबिका हुक्मरान अमरीका के और यानी दुनिया के, इनका जो नुक्ता नज़र था उसे बिल्कुल उलट पॉलिसी मौजूदा हुक्मरानों ने अपनाई है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। देखिए, इससे पहले कैंप डेविड माहिदा हुआ, ओस्लो माहिदा हुआ, इन तमाम का बुनियादी मकसद ये था कि इसराइल के साथ साथ एक फ़लस्तीनी रियासत भी बनाई जाए, जैसा कि अक़्वामे मुत्तहिदा में वादा किया गया था 1948 में। इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीन की रियासत भी होगी, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन आज 70 साल गुजरने के बाद भी इस वादे पर अमल नहीं किया गया। और यानी जब एक बालफर डिक्लेरेशन पहली आलमी जंग के दौरान मंजूर किया गया था सिहियोनियों ने, जो मैंने कहा कि आरएसएस की तरह के जो यहूदी होते हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत ये बालफर डिक्लेरेशन मंजूर कराया, और उसके बाद पै दर पे होते हुए यानी 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों को भेजा गया, उन्होंने वहाँ के लोगों से डरा धमका कर ज़मीनें हासिल की, बड़ी बड़ी दामों पर कीमतें दी और वहाँ की छोटी सी ज़मीन हासिल की, और हर गुजरते वाक़े के साथ साथ उनका दायरे अमल, उनकी ज़मीनें वगैरह बढ़ती गई। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो रियासती हल यानी जो एक बरसों से एक कई लोगों का निशाना है, आलमी बिरादरी के एजेंडे में ये शामिल था, लेकिन इससे इनहराफ किया जा रहा है। और इसके लिए आज जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप के दामाद हैं, जो जिन्हें एडवाइज़र का भी यानी दे दिया गया है ओहदा, जेरेड कुशनर उनका नाम है वो, और सऊदी अरब के वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों का किया धरा है। ये लोग यानी देखिए दोनों में कई ममासलतें हैं, दोनों यानी सोने का चमचा अपने मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, दोनों हर चीज़ को तिजारती नुक्ते नज़र से देखते हैं, और दोनों मिलकर साथ बिजनेस कर रहे हैं, नए नए शहर बसा रहे हैं, और उन्होंने इस मामले को भी तिजारत समझ लिया है। लेकिन ये तिजारत नहीं है, ये हमारे ईमान की बात है, और हम इस ईमान का सौदा होने नहीं देंगे। कम अज़ कम हम इसको रोकने के लिए सही तो करेंगे हर सतह पर। तो यानी देखिए, कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत हैरान करने वाली रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा यह गया था कि, और वैसे आप भी देख रहे होंगे अखबारात में और टेलीविज़न पर, जब से यानी ये ट्रंप हुकूमत बनी है, बहुत यानी राह रस्म इन दोनों की बहुत बढ़ रही है, और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया, अपने मुल्क से बाहर कहीं वो गए तो सऊदी अरब गए, और फिर दोनों के कई ऑलरेडी वहाँ पर तिजारती मफादात हैं, ट्रंप का बहुत सारा पैसा बिजनेस सऊदी अरब में, यूएई में वगैरह लगा हुआ है, तो यानी इनके मफादात के, ट्रंप के मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं उनके दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों मिलकर एक डील कर रहे हैं। और ट्रंप हमेशा से कह रहे हैं कि वो दो रियासती हल नहीं बल्कि एक और अल्टीमेट डील की बात कर रहे हैं। ये अल्टीमेट डील क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी और दूसरे मीडिया इदारों ने भी इसके बारे में बातें कही हैं कि उन्होंने जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, जो फ़लस्तीन के अमलन वहाँ पर आप कह सकते हैं कठपुतली कह लीजिए आप, या जो भी एक निज़ाम चल रहा है, उनको बुलाकर कहा कि आप इस अलकुद्स को भुला दीजिए, और अलकुद्स के करीब एक दूसरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर आपको नया दारुल हुकूमत बना कर देंगे, और इसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, और अगर आप इस डील को कबूल नहीं कर सकते तो आप रास्ते से हट जाइए, इस्तीफ़ा दे दें, हम किसी और आदमी को लाएंगे वहाँ पर, और फिर उसके साथ आपको यानी उसकी यानी उनसे डील करेंगे। तो यही ट्रंप की अल्टीमेट डील है, दो रियासती हल के बजाय वो जो अल्टीमेट डील की बात कर रहे हैं कि अलकुद्स का सौदा किया जा रहा है, लेकिन मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये जो तमाशे हो रहे हैं, जो सिहियोनी लॉबी है, जो ज़ायनिज़्म कहते हैं या ज़ायनिस्ट लॉबी है, उनके इशारों पर हो रहा है, और ट्रंप ने अपने इलेक्शन की मुहिम के दौरान ये वादा भी किया था कि वो यरूशलम या अलकुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करेंगे और अमेरिका का सफारतखाना वहाँ पर मुंतकिल करेंगे। और ये भी एक गलत फहमी है कि ये ट्रंप का किया धरा है, नहीं, ये ट्रंप का किया धरा नहीं है, इसकी इब्तदा काफ़ी अरसा हुई थी। 1995 में अमेरिका की हुकूमत ने कानून मंजूर किया था जिसके तहत कहा गया था कि ये यानी इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से अलकुद्स को तस्लीम किया जाएगा और फिर अमेरिका का सफारतखाना 1999 में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन मसलहत के तकाज़ों के तहत जो भी सुदूर थे अमेरिका के, बिल क्लिंटन ले लें, जॉर्ज बुश ले लें या ओबामा ले लें, हर 6 महीने बाद उसमें तौसी करते गए ये सोच करके अभी वक्त मौजू नहीं है। लेकिन इस शख्स ने तमाम हदें पार कर दी हैं और यानी जो रेड लाइन यानी उर्दुगान की ज़बान में कहें तो रेड लाइन पार कर दी है। लेकिन ये इन लोगों की ये जो गलती है उन्हें बहुत भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि हालिया अरसे में हमने देखा है कि ज़मीनी हकीकतें क्या हैं। देखिए, मैं हमारे दोस्तों में, दोस्त अहबाब में और महफिलों में समझाने की कोशिश करता हूँ मसाइल, तो मैं लकीर ड्रॉ कर देता हूँ, एक लकीर खींचता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आलम इस्लाम के मामलात हैं और दुनिया के मामलात हैं, हसास मामलात हैं, उनमें कौन कहाँ खड़ा है। और मैं उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि एक तरफ यानी अमरीका है, एक तरफ यानी ज़ायनिज़्म है या यहूदियत है, कट्टर यहूदियत है, एक तरफ कट्टर हिंदुत्व है, एक ही तरफ खड़े हुए हैं ये लोग। यानी एक तरफ यानी कट्टर ईसाइयत है, कट्टर यहूदियत है, और एक तरफ अरब हुक्मरान हैं, और एक तरफ कट्टर हिंदुत्व एक तरफ एक जानिब है, और दूसरी तरफ है कि ईरान है, हिजबुल्ला है और रशिया है, या वो लोग हैं जो यानी एक मौशी एक मखसूस मौशी फ़लसफे पर अमल करते हैं। बहरहाल लाइन्स वाजे हैं। और ये भी हमने देखा, सब ने देखा कि ये जो दुनिया की जो कश्मकश चल रही है, चाहे अस्करी या फौजी मैदान में ले लें आप या मौशी मैदान में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पलड़ा भारी है, यह हमने देखा है। तो ये जो इकदाम है इससे होगा ये कि ये जो ताकतें हैं, मैं इन्हें मुजाहमत की ताकतें कहता हूँ, रेसिस्टेंट फोर्सेस, इन लोगों का पलड़ा भारी रहा है, चाहे आप सीरिया में ले लें, इराक़ में ले लें, लबनान में ले लें, यमन में ले लें, या अगर दूसरे मामलात में देखें तो यूक्रेन में भी कुछ हुआ था जहाँ पर रशिया का गलबा हुआ था। बहरहाल ये पै दर पे और मौशी मैदान में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसका कोई यानी सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब कि ये यानी एक ये दुनिया में ये वक्त भी आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छाई की ताकतें हैं वो गलबा पा रही हैं। तो और इसके अलावा दुनिया में जितने भी मसाइल मैं देखता हूँ, आप दहशतगर्दी ले लें या इस तरह के मामलात ले लें, तो इसमें मुझे दो वाक़यात हैं जिनकी वजह से ये आप इंतहा पसंदी कह लें, दहशतगर्दी कह लें या महरूमियत के जज्बात कह लें, जो यानी एक तो इसराइल का बनना मुसलमानों की सरजमीन पर मुबैना तौर पर हज़ारों साल पहले जो लोग वहाँ से चले गए थे उन्हें दोबारा वहाँ पर लाकर बसाना, गुंडागर्दी करना और मुसलमानों का हक़ मारते हुए इसराइल के नाम से एक नाजायज़ मुल्क वजूद में लाना, ये एक वजह है इंतहा पसंदी की। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में रशिया ने हमला किया था और वहाँ पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद एक बहुत बड़ी सियासत हुई थी रशिया को हराने के लिए, 1979 की बात है और ये 10 साल तक ये जंग चली थी। ये दो जो वाक़यात थे उसकी नज़र में कई ज़ेली मसाइल पैदा हुए और ये जो फ़ैसला है इसके भी कई दूरस असरात पड़ सकते हैं। देखिए, इससे जो महरूमियत के जज्बात, इंतहा पसंदी के जज्बात बढ़ सकते हैं और जो फ़लस्तीन में मुज़ाहमत की ताकतें हैं, हमास ले लें आप या दूसरे लोग हैं या हिजबुल्ला ले लें, इनसे जो कश्मकश की फ़ज़ा पैदा होगी और लाजमन जो फातह कैंप है हालिया बहरानों का, वो इनकी लाजमन मदद करेगा और फिर वही होगा जो यानी सीरिया में हुआ है या इराक में हुआ है। और इसके नतीजे में अमेरिका का, सहियोनियों का और अरब हुक्मरानों का जो अपने मौका परस्ती की वजह से इस तरह की पॉलिसियां अपनाए हुए हैं, उनका जो कैंप है, उन्हें जो शिकस्त हुई है, वो तारीख दोहराई जा सकती है। और मैं देख रहा हूं कि जो सऊदी हुक्मरानों के जो भी मामलात हैं उनका हर फैसला उलट साबित हो रहा है। यानी ईरान बिल्कुल पहले यकाओ तनहा था, अपनी गलतियों की वजह से पै दर पे तश्तरी में रखकर ईरान को एक के बाद एक ममालिक तोहफे में देते चले गए। अब देखिए, कतर कहाँ था जब अरब बहार का मामला हुआ, कतर सऊदी अरब के कैंप में था, आज कतर कहाँ खड़ा है, तुर्की कहाँ था? तुर्की ने भी बहुत दाइश वगैरह के भगाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और लेकिन आप आज तुर्की कहाँ खड़ा है? इसी तरह यमन ले लें आप, यमन में आपके अली अब्दुल्ला साले की ही हुकूमत थी और अलहूसियों से आप खुद लड़ते थे, लेकिन आज यमन में कौन गलबा रखता है और यमन कहाँ खड़ा है? हालिया जो गलती थी लबनान में गलती की आपने, जो साद हरीरी का मामला आया, और आज लबनान में यानी किसका गलबा है, और साद हरीरी का दाव भी उलट गया, और इस तरह पै दर पे जो भी ये गलती करते हैं। हाल ही में अली अब्दुल्ला साले का वाक़या हुआ, जो आपने उसे कुछ दाना डाला और वो यानी वो साइड चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मैं समझ रहा था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन इतनी जल्दी होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो ये भी दाव उल्टा पड़ गया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस इकदाम के बहुत दूरस असरात पड़ेंगे, और मैं पुरुमीद हूँ कि इससे उल्टा उन लोगों को ही नुकसान होगा जिन्होंने ये इकदाम किया है। हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा था कि जैसा कि अगर हम मान लें कि ये तमाम होने वाला नहीं है और ये इकदाम के क्या यानी असरात पड़ने वाले हैं, मैंने कहा कि देखिए किसी ने मुझसे पूछा कि इस फैसले का क्या मतलब है, यानी कि फौरी मुंतकिल हो जाएगा अमेरिका का जो सफारत खाना है अलकुद्स में? मैंने कहा नहीं, इसके लिए अगर यानी पुरमन हालात में आइडियल हालात में भी 3-4 साल 5 साल का अरसा लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब 3-4-5 साल का अरसा है तो फिर हमें फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि 1917 में इसराइल का वजूद सिर्फ एक कागज़ पर, कागज़ के टुकड़े पर था जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं, लेकिन वही कागज़ का टुकड़ा हमारे सीनों पर एक खंजर बनकर यानी पैवस्त है गुज़िश्ता 70-80 साल से। कहने का मतलब ये इकदाम हमें नज़र नहीं आते या हम सोते रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम ख्वाब गफलत में रहते हैं और हम पर शबखून मारा जाता है, तो ये वैसे ही वाक़ियात की कड़ी है। हमें बेदार होना चाहिए, इस फैसले की मुज़ाहमत करनी चाहिए, और इसकी मुज़ाहमत करते हुए हर सतह पर हमसे जो कुछ हो सकता हमारे दायरे अमल में इसकी मुज़ाहमत करनी चाहिए। देखिए आज हम फ़िरक़ों में बटे हुए, मैं अपने आप को नॉन सेक्टेरियन मुस्लिम कहता हूँ, मेरा किसी मसलब से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ या मोमिन, तो इसी तरह, लेकिन ये बिलउमूम बात नहीं है, हम मसाइल को तासुब की ऐनक से, मसलक की ऐनक से देखते हैं, इसीलिए हमें या तो सच नज़र नहीं आता है या सच नज़र ना आने की सूरत में, यानी आने की सूरत में भी हम अपनी किसी ना किसी मसलहत की वजह से खामोश रहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बात नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, और यानी चाहे इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़े, और मैंने कीमत चुकाई है, चाहे अपने अतराफ मेरे यानी अजीज़ व अकारिब में ले लें या टेलीविज़न पर ले लें या किसी और फोरम में, लेकिन मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरे खुदा का और मेरे ज़मीर का मामला है। और हम मसलकों में पड़े हुए हैं, मुझे याद आता है तारीख में अब्बासी दौर में, अब्बासी दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर भी कहा जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई और एक तरह से हम सुपर पावर थे, लेकिन उस अब्बासी दौर में एक दौर ऐसा भी आया कि हम इसी मसलकी मामलात में या यानी फरोई छोटे मोटे मसाइल में उलझे रहे, कि जो है अब इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान खालिक है या मखलूक है, इस तरह की बहुत सारी बातें, और मंगोलियों ने हमला कर दिया और खिलाफत अब्बासिया की ईंट से ईंट बजा दी, बगदाद की यानी दरियाए फुरात और दजला में जो है खून की नदियां बहने लगी। बहरहाल ये मामला हुआ था और आज वही सूरत हाल है, हम ऐसे ही मसाइल में उलझे हुए हैं। देखिए ये जो मुसलमानों के मसाइल मौजूदा मैं देख रहा हूँ वो तकरीबन 100 साल के आसपास पैदा हुए थे, और इन 100 साल पहले भी तकरीबन यही हालात थी। ये बात नहीं कि हम आज ही इस तरह के हैं, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आज नज़र आती है, और जिसके लिए बड़ी हद तक ईरान जिम्मेदार है, उसने एक मुज़ाहमत को एक आवाज़ दी है, एक ताकत दी है, और आज ये ताकतें जितनी ताकतवर हैं मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता सदियों से, कई सदियों से नहीं थी, ये मेरा मुशाहिदा है। बहरहाल इन ठीक 100 साल पहले जब इस तरह के बहुत बुरे हालात थे, पहली आलमी जंग का दौर था, तो यानी मुसलमानों की हालत पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तेराब नहीं। तो मुझे, मैं बस आप तमाम हज़रात से ये सवाल करता हूँ कि क्या ट्रंप का ये फैसला वो तूफान हैं जो आपकी बहर की मौजों में इस्तेराब लाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो फैसला साबित हो। खुदा हाफिज़।